समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल भी होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं सायरा मुस्तफा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार अलका। आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड अलका, आज तो फर्स्ट मार्च हो गई है, तो बीइंग अ सैटरडे आई एम श्योर दैट लिसनर्स आर वेलकमिंग दिस न्यू समर सीजन।
बिल्कुल, और मार्च का महीना है, मार्च करने का महीना है।
वेरी इन अ वेरी रिलैक्स्ड मोड बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट रशिंग टू वर्क एंड इट्स अ वीकेंड एंड यस वी आर हियर टू ब्रिंग अ कंप्लीट पैकेज फॉर अ गुड वीकेंड फॉर यू, जिसमें अलका ने बताया क्या क्या होगा।
बिल्कुल, और हल्की जो बारिश हुई है और कहीं तेज भी हुई होगी उसने मौसम को और
सुहाना
अच्छा
बना
दिया
है। एब्सोल्युटली। एंड बारिश हुई है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी ठंड भी बढ़ी है,
बढ़ेगी बिल्कुल।
मेनी ऑफ अस हैड प्रॉब्ली रैप्ड अप आवर स्वेटर्स इन द क्लोजेट्स एंड वो फिर से निकाले।
कोई बात नहीं, दोबारा निकालें वो।
लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस अलका।
बिल्कुल।
Prime Minister Narendra Modi will virtually address a day-long post-budget webinar on agriculture and rural prosperity in New Delhi today. The webinar aims to engage stakeholders in a focused discussion and strategizing the effective implementation of the 2025 budget announcements. It will focus on agriculture growth and rural prosperity, ensuring a collaborative approach to realize the vision outlined in the budget. The event will also be joined by all the union ministers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will present his views at the event this afternoon. The goal of this webinar is to facilitate dialogue, gather insights, and ensure timely and coordinated actions towards achieving the set goals. Prime Minister Modi will attend the NXT conclave at Bharat Mandapam in New Delhi today. During the program, the channel NewsX World will also be launched. In a social media post, the Prime Minister complimented the ITV network and foundation for bringing together people from different walks of life for this conclave. He further expressed hope that this conclave will be characterized by fruitful deliberations.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक के बाद दुर्लभ भू खनिजों से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत विफल हो गई। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि श्री जेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नफरत करते हैं और इसी वजह से कोई समझौता करना मुश्किल हो जाता है। वहीं जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि युद्ध के समाधान बातचीत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। बैठक में श्री ट्रंप ने श्री जेलेंस्की पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन पर लाखों लोगों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने जेलेंस्की को चेतावनी दी कि उनके कार्य विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की ओर ले जा सकते हैं। जवाब में श्री जेलेंस्की महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अचानक व्हाइट हाउस से चले गए। दोनों नेताओं का निर्धारित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन भी रद्द कर दिया गया।
Later, talking to reporters outside the White House before he left for his home in Florida, President Trump said that he wants an immediate ceasefire between Russia and Ukraine and want Ukrainian President Volodymyr Zelensky to make peace or lose American support. Mr. Trump said he believes Russian President Vladimir Putin is ready for a peace deal. Meanwhile, European leaders have pledged to stand by Ukraine in the wake of the contentious White House meeting between American and Ukrainian leaders, with their statements in support of Kyiv ensuring a deepening transatlantic rift.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूफी परंपरा ने भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कल नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित जहान ए खुसरो सूफी संगीत समारोह में कहा कि किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता उसके गीतों और संगीत से समृद्ध होती है। उन्होंने जहान ए खुसरो की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन देश की संस्कृति और कला के लिए महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, जो इसकी सबसे बड़ी सफलता है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों में शुरू होने वाले रमजान के अवसर पर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। भव्य सूफी संगीत समारोह कल तक चलेगा। इस महोत्सव में अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकार एक मंच पर आए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को प्रवेश कराने और उनके ठहरने की सुविधा प्रदान करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसका सख्ती से निपटान किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान गृहमंत्री ने आश्वासन दिया कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार विकसित और सुरक्षित दिल्ली बनाने के लिए दोगुनी गति से काम करेगी। उन्होंने दिल्ली में अंतर्राज्यीय गिरोहों के खात्मे और नशीले पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने पर भी जोर दिया।
In Uttarakhand, 33 of the trapped workers have been rescued from a massive avalanche that occurred yesterday near Mana village in Chamoli district. Talking to Akashvani News, BRO Commander Ankur Mahajan said, teams of ITBP, Army, BRO, NDRF and SDRF are engaged in search operations to rescue the remaining workers. However, bad weather is hindering the efforts. Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh spoke to Chief Minister Pushkar Singh Dhame and assured all possible support. The Chief Minister took an overview of the rescue operations at the State Emergency Control Room in Dehradun. He told reporters that the central government, state government and other agencies are working on a war footing to rescue the trapped workers.
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी विपणन सत्र में गेहूं और धान की अधिकतम खरीद के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के साथ एक बैठक में इस पर चर्चा हुई।
Renowned holistic health coach and co-founder of Liu Cuchillo Holistic Healing Systems, Liu Cuchillo emphasized the importance of addressing obesity to create a healthier India. Talking to media, Mr. Cuchillo supported Prime Minister Narendra Modi's vision of tackling obesity, highlighting the need for balanced diets, active lifestyles, and increased awareness to prevent obesity and related lifestyle diseases. He visited an Anganwadi center in New Delhi yesterday to witness firsthand the implementation of the Poshan Abhiyan. The visit aligns with the Government of India's commitment to tackle malnutrition through Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, in which social behavioral change and community participation is a major component. During his visit, Mr. Cuchillo interacted with Anganwadi workers, who are the key stakeholders engaged in strengthening nutrition and early childhood education in the community. He also interacted with children at the Anganwadi center and motivated all towards good nutrition and healthy lifestyle practices.
ICC Champions Trophy क्रिकेट में कल लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप बी से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल ग्रुप बी में 4 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि अफगानिस्तान 3 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है। दक्षिण अफ्रीका बेहतर रन रेट के कारण 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड प्रतियोगिता से बाहर हो चुका है। ग्रुप बी में आज शाम कराची में दक्षिण अफ्रीका का सामना इंग्लैंड से होगा। सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए इस मैच में जीत या बराबरी करना बेहद जरूरी है। वहीं अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर सकता है अगर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को 207 या इससे अधिक रन के अंतर से हरा दे।
And in tennis, India's Yuki Bhambri and his partner, Alexei Popirin of Australia, have advanced to the men's doubles final of the Dubai Championships. The unseeded Indian-Australian duo defeated Jamie Murray of UK and John Pearce of Australia in the semi-final yesterday. This is Bhamri's first ever ATP 500 final. The victory also pushed him to a career high live ranking of number 41 in the ATP doubles rankings. Bhamri and Popyrin will take on Henry Patton of UK and Harri Heliovaara of Finland in the final this evening.
न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का. पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं सायरा.
Thanks, Alka. Let's start with Chennai. Greater Chennai Corporation will increase its zones from 15 to 20 by reorganizing administrative boundaries to improve civic services and ensure equitable distribution of resources across the city, where the population has touched 85 lakh. A statement from the Municipal Administration and Water Supply Department said the city's zones were last redrawn in 2011 when 42 local bodies were merged, expanding the corporation's area to 426 square kilometers. However, the existing zones have uneven population distribution, with older central zones recording higher density, making uniform service delivery a challenge. Another news coming in from Chennai. A resolution was passed at the civic body to maintain city beaches to private contractors. Of the 345 acres to be covered, the Marina Beach has 250 acres and is divided into 7 parts. The Marina, Basant Nagar, Srinivaspuram, Thiruvanamayur and new beaches will be maintained as part of the efforts to prepare them to become contenders for Blue Flag certification and international recognition of clean beaches meeting more than 30 criteria. 3 tractors will be deployed on the Marina, while 1 each will be deployed at other beaches. Sanitary staff working in 2 shifts will be monitored from control rooms in the offices of the regional deputy commissioners. And moving on to Bengaluru, Karnataka Energy Minister K.J. George has assured to meet the energy requirements of 19,000 megawatt power demand during the summer season. Addressing the media persons in Bengaluru yesterday, the minister said that measures will be taken to prevent load shedding during the coming summer months. He informed that there is a surge in power consumption, which he added is a positive indicator of broader economic recovery in the state. Mr. George told media persons that even the agricultural pump sets will get 7 hours of electricity daily. The industrial and household consumers will get continuous power supply 24 hours a day. Measures are being taken to fulfill the power up till the first week of June. And the minister also informed that there is no electricity storage facility in the state, and to resolve this issue, there is a plan to create 2,000 megawatt storage capacity at several power stations. Moving on to the city of Hyderabad. The centre has given approval to the second airport in Telangana at Mamnur near Warangal, which is located less than 150 kilometres from the state capital of Hyderabad. State Roads and Buildings Minister K. Venkata Reddy said that the centre has responded positively to the request of the Airports Authority of India as per the requirement of the state government to develop Mamnur Airport and resume operations. He said state government earlier released 205 crore rupees for handing over 253 acres of additional land required for the development of Mamnur Airport to Airports Authority of India. At present, Warangal Airport is a non-operational AAI airport. The clause relating to not to approve another airport within 150 kilometers range of the concession agreement relating to Hyderabad Greenfield Airport signed between the central government and HIAL has been waived as a one-time arrangement. So, Alka, this was the buzz that I had from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
बिल्कुल, राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार के समय सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में कोविड के समय धन के कम उपयोग, परियोजना पूरी करने में देरी और शहर के अस्पतालों में दवाओं तथा कर्मचारियों की कमी को उजागर किया गया. रिपोर्ट में सामने आया कि पिछली सरकार ने कोविड के समय केंद्र से प्राप्त लगभग 788 करोड़ रुपए में से लगभग 543 करोड़ रुपए का उपयोग किया. रिपोर्ट में वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि शामिल है. दिल्ली नगर निगम ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित संपत्ति कर छूट संबंधी रिपोर्टों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि संपत्ति कर के भुगतान में कोई छूट या रियायत नहीं दी गई है। निगम ने एक वक्तव्य में कहा कि संपत्ति कर का भुगतान करना सभी संपत्ति मालिकों और कब्जाधारियों के लिए अनिवार्य है। निगम ने कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर संपत्ति कर छूट के संबंध में किए जा रहे दावे पूरी तरह गलत बताया है। दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले स्वयं मूल्यांकन के आधार पर इस वित्तीय वर्ष के लिए देय संपत्ति कर का भुगतान करें ताकि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। आम आदमी पार्टी दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कल पार्टी मुख्यालय में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के साथ बैठक की। इस बैठक में विधानसभा में रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री राय ने कहा कि अच्छा काम करने वाले अपने पदाधिकारियों को ही संगठन में जिम्मेदारी देगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद सभी विधानसभा के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुष्प महोत्सव पलाश का दूसरा चरण कल स्मृति वन मयूर विहार फेज 3 में शुरू हुआ। यह पहली बार है जब यह पुष्प महोत्सव दो स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। ये वार्षिक महोत्सव वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने और दिल्ली के लोगों को प्रकृति के समीप लाने के लिए मनाया जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुष्प महोत्सव पलाश का कल दौरा किया और महोत्सव के आयोजन में प्राधिकरण की टीम की सराहना की। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और उनसे राष्ट्रीय राजधानी के सौंदर्यीकरण के लिए काम करना जारी रखने का आग्रह किया। और ये जो दूसरा चरण है जो कल आज और कल यानी 2 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है और अगर समय है तो आज शनिवार है, कल रविवार है, आनंद उठाया जा सकता है। और अगर हम मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार मेटा के सहयोग से आपले सरकार पोर्टल से 500 से अधिक सेवाओं को व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाना है क्योंकि व्हाट्सएप का व्यापक उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। मुंबई टेक वीक 2025 के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्टार्टअप और क्षेत्र में महाराष्ट्र के नेतृत्व की जानकारी दी जिसमें फिनटेक और एआई संचालित विकास पर जोर दिया गया। प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने मुंबई के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, यह सुनिश्चित करते हुए कि नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्र नए आईटी हब बने जिससे बेंगलुरु और हैदराबाद पर निर्भरता कम हो। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े फैसले में महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर वावनकुले ने समूचे महाराष्ट्र में 1660 ठप पड़े पेट्रोल पंपों के लिए मंजूरी में तेजी लाने के लिए प्रत्येक जिला कलेक्टर के कार्यालय में सिंगल विंडो प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर वानकुले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में 2000 नए पेट्रोल पंप खोलने की योजना बनाई है। इन पेट्रोल पंपों के चालू हो जाने पर 30,000 से अधिक नौकरियां सृजित होने और राज्य में लगभग 4,000 करोड़ रूपये का निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है। और सायरा, होली अब बहुत ही निकट है, महीना ये होली का ही है मार्च का, तो मध्य रेलवे ने होली पर विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें मुंबई और दिल्ली, बनारस, दानापुर, समस्तीपुर, कन्याकुमारी, मऊ, गाजीपुर और तिरुअनंतपुरम सहित कई स्थानों के बीच चलेंगी। ये घोषणा सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में की गई है। इन विशेष ट्रेनों को चलाने से त्योहारों में भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी और होली मनाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात कर लें कोलकाता की तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पश्चिम बंगाल में 3,80,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य रखा है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री पी के भारद्वाज ने कल कोलकाता में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठन के निर्माण, जलवायु प्रतिरोधी कृषि, प्रसंस्करण और विपणन पर जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि सचिव के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आज सवेरे आप सुन रहे हैं अलका और सायरा के साथ और अब समय है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात कर लें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह बादल छाए रहे और हल्की वर्षा भी हुई है जिससे मौसम जो है वो खुशनुमा है, हम बात कर चुके हैं। और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि यह स्थिति पश्चिमी विक्षोभ के कारण बन रही है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और वहीं जॉय सिटी कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बाकी का हाल आप बताएं।
यस अलका, एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर सिटीज ऑफ चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद इन साउथ और सदर्न इंडिया, मोस्टली देयर विल बी अ पार्टी क्लाउडी स्काई। चेन्नई विल हैव अ पार्टी क्लाउडी स्काई, मिनिमम टेम्परेचर इज विल बी 25 and maximum will be around 33 degrees Celsius, while Bengaluru is expected to have mist. Minimum temperature was 17 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees Celsius, while Hyderabad, along with a cloudy sky, there will be haze as well. And the temperature in Hyderabad will hover between a minimum of 20 and a maximum of 34 degrees Celsius. And if we recall some of the events, Alka, before we in fact recall, today let's tell our listeners that it's a Zero Discrimination Day, which is marked every year on 1st of March by the United Nations and other international organizations as well. This day is observed by all the UN member countries and it aims to promote equality before law. 1st of March is a day dedicated to ending all kinds of discrimination, whether it is social or political hurricanes of hate, borders, barriers and fences. For a flourishing humanity, and it is pivotal to avoid all sorts of discrimination. World Civil Defense Day is also observed annually on 1st of March to raise awareness about the importance of civil protection, disaster preparedness, and emergency response. This day highlights the role of civil defense organizations in safeguarding communities against natural and man-made disasters. Established by the International Civil Defense Organization, the observance serves to promote preventive measures, safety protocols, and resilience building strategies to ensure the security of populations worldwide. और अब जो है तारीख के पन्ने पलटे जाएं, and let's see what are the important events that took place today.
बिल्कुल, आज 1872 में दुनिया का पहला येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान बना था।
And if I take you back further to the year of 1565, the city of Rio de Janeiro in Brazil was founded by the Portuguese. Also in 1864, Rebecca Crumpler became the first black woman to earn a medical degree. फिर आपने 1872 की बात तो बता ही, and let's tell our listeners what happened on this day in 1896. Well, Henry Becquerel discovered radioactivity while working with uranium salts.
बिल्कुल, और 1954 की बात करें तो अमेरिका ने बिकनी द्वीप पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था।
Also on this day in 1961, President Kennedy established the Peace Corps, an organization dedicated to promoting peace and understanding across the world. And on this day in 1966, Soviet Union probe crashes into the Venus.
और बिल्कुल 1969 की बात करें तो पहली सुपरफास्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली और कलकत्ता, अब कोलकाता कहते हैं, उसके बीच में चलाई गई थी। और आज भी राजधानी जो है ना
जी,
उसका सफर बड़ा शानदार होता है।
Absolutely, everybody looks forward कि राजधानी में टिकट मिल जाए, isn't it?
बिल्कुल।
So, एक कह सकते हैं कि उसने अपना एक मेयार जो है अभी तक कायम रखा है। एंड इन 1995 अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड।
बिल्कुल, 1995 की बात करें तो लोकप्रिय इंटरनेट सर्च इंजन याहू की शुरुआत हुई थी।
यस, एंड आई थिंक दोज वर द डेज 1990s व्हेन इंटरनेट वाज प्रोबब्ली चेंजिंग द वर्ल्ड वेरी रैपिडली। और आज हम देख रहे हैं कि मतलब सेकंड्स के हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है।
बिल्कुल सायरा, और जो वो चिट्ठियों का जमाना था, वो धीरे धीरे जो शब्दों की जो दुनिया रची जाती थी, गढ़ी जाती थी, और कागज के दिल पे जो कलम से लिखी जाती थी, वो छूट गई।
एब्सोल्युटली, बट व्हाट लॉस, व्हाट अ लॉस ऑफ लेटर्स, यू नो, बिकॉज एक खत खाली, आजकल तो हम लोग व्हाट्सएप पे जिसे बड़े बुजुर्ग देखते हैं तो वो यही भाषा कहते हैं, ये क्या टिपिर टिपिर कर रहे हो।
बिल्कुल, और उसे डिलीट कर दिया जाता था, लेकिन पत्र जो होते थे वो डिलीट नहीं होते थे, एक बार लिख दिए तो लिख दिए।
एब्सोल्युटली, और मेरे ख्याल से आप याद करें कि जब किसी का खत आता था तो पूरा घर इर्द गिर्द बैठता था जब वो खत पढ़ा जा रहा होता था, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे क्या
मेरे लिए। और वो जो होता था लास्ट में जो होता था ना कि बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार, और पत्र मिलते ही
बिल्कुल
लिखना, जवाब देना उसका, उसकी एक अपनी अलग खुशबू थी, अपनी अलग उसकी मिट्टी थी, और बड़ी कच्ची कच्ची थी, लेकिन जो डोर थी वो बड़ी पक्की थी।
हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी अपनाइयां दिखती थी, और somehow in the, you know, through when we have, probably कोई कहता है ना कि आजकल कम्युनिकेशन के मीन्स बहुत हैं, लेकिन कम्युनिकेशन डज नॉट मीन क्लोजनेस, यू नो, और प्रॉक्सिमिटी ऑफ इमोशंस जो खतों से एस्टैब्लिश होती थी।
बिल्कुल, कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाते,
कनेक्ट नहीं कर
एक थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं, लेकिन खैर जो टेक्नोलॉजी है उसका भी अगर हम सही से उपयोग करें तो बहुत अच्छी बात है कि हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कोई कहीं बैठा है हम उससे बात कर सकते हैं. तो अच्छी चीजें हैं अगर आप उसको जैसा लेना चाहें उस तरह से चीजें चलती हैं. और बात कर ले हम 2008 की, तो ICICI बैंक ने न्यूयॉर्क में अपनी शाखा खोली थी.
But I will like to recall an event of 1998. We all remember the epic romantic film Titanic. Well, it became the first movie to gross over $1 billion worldwide. And now if we remember some of the personalities, Alka, who either have their birth or death anniversaries, तो इस फेरिस्त में सबसे पहला नाम किसका है?
सबसे पहले हम नाम ले रहे हैं करतार सिंह दुगल का. आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, और जिन्होंने पंजाबी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा, उनकी रचनाओं में लघु कथाएं, उपन्यास और नाटक शामिल हैं. उनकी रचनाओं का भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है. और 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. मुख्य रचनाओं की अगर बात करें तो हाल, मुरीदों का, ऊपर की मंजिल, इंसानियत, ये सब हैं. और कहानियां लिखी, कविताएं लिखी, और उनकी कहानियों के कुल 24 संग्रह प्रकाशित हुए और कविताओं के भी 2 संग्रह हैं. और साहित्य की ही बात करें तो आज हम याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है. और उनकी एक जो छोटी सी रचना है, रचनाएं तो उन्होंने बहुत की हैं, लेकिन पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार. और इनकी ऊर्जा और चेतना से भरपूर जो रचनाएं हैं वो इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया. और पंडित सोहनलाल द्विवेदी स्वतंत्रता आंदोलन युग के एक ऐसे विराट कवि थे जिन्होंने जनता में राष्ट्र चेतना जागृत करने, उनमें देशभक्ति की भावना भरने और नवयुवकों को देश के लिए बड़े से बड़े बलिदान के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया. और 1 मार्च 1988 को सोहनलाल द्विवेदी का निधन हो गया.
We are also remembering P.N. Panikkar on his birth anniversary today. And if we, those of, you know, many of us would probably know P.N. Panikkar, but those of us who probably don't know, he's known as the father of the library movement in the Indian state of Kerala.
Bilkul.
The activities of the Kerala Granthashala Sangham that he initiated, it triggered a popular cultural movement in the state, which produced universal literacy in the state in the 1990s itself. And in fact, unki jo death anniversary hoti hai 19th June ko, it is observed in Kerala as the reading day. Since the year 1996, the Department of Education in Kerala also observes reading week for a week from 19th to 25th of June. And in 2017, the Indian Prime Minister Narendra Modi declared 19th of June as Kerala's reading day and a national reading day in India as well. The following month is also observed as the National Reading Month in India. And we are also remembering a very, very famous, you can say somebody who was related to cinema. We are remembering Manmohan Desai today on his death anniversary. And a producer and director, one of the most successful filmmakers of the 70s and 80s. Aur Alka, jise kehte hai na, jo masala filme ka chalan shuru hua tha.
Bilkul.
Wo Manmohan Desai, Prakash Mehra aur Nasir Hussain ne shuru kiya tha.
Bilkul.
डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह.
मनमोहन देसाई 70 और 80 के दशक में सबसे सफल फिल्म निर्माता और निर्देशक रहे. और इनकी जो फिल्में हैं, छलिया, आ गले लग जा, सच्चा झूठा, चाचा भतीजा, सुहाग, नसीब, अमर अकबर एंटनी, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान जैसी कई हिट फिल्में इन्होंने दी.
हम सच बोला है ओ, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें, बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें.
And Dhalka, Manmohan Desai was known for his family-centered action, song and dance films which catered to the taste of Indian masses and through which he achieved great success. His movies defined a new genre called masala films, as I said, and the lost and found wala plot tha, wo bahut zyada unki filmon mein dekhne ko milta tha.
बिल्कुल सायरा. और 1 मार्च 1994 को इनका निधन हो गया. और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से हम अनुमति लें, तो अलका सिंह और सायरा को अनुमति दीजिए. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी.
नमस्कार.
जहां तुम हो वहां मैं भी हूं.